ओम शांति। आज का विषय सच्चाई और सफाई। बाबा सत्य है, हम बाबा के बच्चे हैं, पर हम हैं कलयुग में, सारी दुनिया झूठी। हम थोड़े गिने चुने ब्राह्मण हैं, सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। तो क्या होता है, झूठ का सामना करना पड़ता है। तो जैसे हम ज्ञान में आते हैं, घर वालों का सामना करना पड़ता है, परिवार का सामना करना पड़ता है, समाज का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारी नॉलेज न्यारी है, हमारे रस्म रवाज न्यारे हैं, और उसमें भी ब्रह्मचर्य की बातें हैं, वो बिल्कुल समाज से और परिवार से बिल्कुल भिन्न है। तो सबसे ज्यादा उस कारण सामना करना पड़ता है। खान पीन का हमारा जो नियम है, उससे सामना करना पड़ता है, और जो कई बातों में हम ना करते हैं, हम समझते हैं हमारे बच्चों को शादी नहीं करानी है, या औरों की शादी में नहीं जाना है। तो इस कारण क्या है, परिवार का और समाज का सामना करना पड़ता। परंतु हम यदि अपनी बातों में दृढ़ रहते हैं, तो क्या होता है, विजय हमारी है। ये हमें बुद्धि में हमेशा रखना है। कहते हैं सत्यम एव जयते, कि हमारा विजय है। सामना करना पड़ता है। परंतु जब देखते हैं कि हम पक्के हैं, तो उनको आखिर छुट्टी देनी पड़ती है, और कई बार वो खुद भी आ जाते हैं ज्ञान में। हमारे पास एक माता थी, उसका पति ज्ञान में नहीं था। मैं समझती हूँ 8-10 साल अकेली चली, आखिर पति भी आ गया। और एक पति तो मेरे पास डिस्पेंसरी में लड़ने आया, और एक सेंटर पर आया लड़ने। कहते हैं कौन से शास्त्र में लिखा है ब्रह्मचर्य पालन करना। हमारे युगल को आने नहीं दो। मैंने कहा ये तो मंदिर है, मंदिर में हम नहीं कहेंगे कि मंदिर में आप पूजा भगत लोग नहीं आओ। आपको यदि अपनी युगल को नहीं आने देना है, तो आप घर में रोको, मुझे नहीं बताओ। उसने 2-4 बार अपनी युगल को घर से निकाल दिया, एक बार तो रात को निकाल दिया 10 बजे। तो वो बिचारी नाइट ड्रेस में थी, साड़ी बाड़ी उतार दी थी, रात को 10 बजे कहाँ जाएंगी बिगर साड़ी। तो सारी रात छत पर अगासी में बैठी रही और सवेरे जब दूध वाला आया तब घर में आई। तो क्या है, पर वो अभी ज्ञान में है। और एक भाई की युगल थी, वो ज्ञान में नहीं थी। वो भाई चलता रहा, रोज क्लास में आता रहा और उस युगल ने एक बार रेलवे पटरी पर जाकर आपघात करने का सोचा, जिंदा आई। एक बार अपने को पेट्रोल छांट कर मारने का कोशिश किया, जिंदी रही, वो भी ज्ञान में आ गई। तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। विदेश में ऐसा नहीं चलता। विदेश में क्या है, माताएं कमाती है, वो क्यों अपना पति का बंधन रख के छोड़े। तो इसलिए विदेश वाली माताएं तो घर छोड़ के चली जाती है। और जो नष्ट मुआ होती है बच्चों को भी छोड़ दिया। एक माता ने 2 बच्चे थे 5-7 साल के और पति का बच्चों में मुंह था, तो उसने कहा मुझे लड़ना नहीं है पति के साथ, भले संभाले पति। पति को बच्चे को छोड़ के चली गई। तो क्या है कि सामना करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया झूठी है ना। तो जो सच के मार्ग पर चलते हैं उनको खुशी होती है, बल सामना भी करते हैं तो भी खुशी है। कहते हैं ना, सच तो बीठो नच। हमारा बेंगलोर का अंगना भाई था, सचमुच बाबा के सामने नाचता था। और भी पहाका है, सच की नाव डोलेंगी डूबेंगी नहीं। तो तूफान आते हैं, इधर उधर होता है, परंतु डूबने वाले नहीं हैं हम, ये पक्का। तो क्या है कि हमें सत्य ज्ञान का पता लगा है, और जब हम अनुभव से बताते हैं, क्योंकि जब निश्चय होता है हम अनुभव से बताते हैं कि ये भगवान है, भगवान कृष्ण नहीं है या देवताएं नहीं है, निराकार भगवान है। जब हम अपने अनुभव से और अपनी प्राप्तियों से औरों को बताते हैं कि हमको अभी ज्ञान से क्या प्राप्ति हुई है, क्योंकि मेजोरिटी ने भक्ति तो की है, और भक्ति में हमारी क्या हालत हुई और ज्ञान से क्या प्राप्ति हुई, ये जब हम औरों को बताते हैं तो क्या होगा, उनकी दिल को टच करेगा। बाबा कहते हैं जो भाषण करने में होशियार है ना, वो औरों को प्रभावित करेंगे, बुद्धि से प्रभावित करेंगे, परंतु दिल को नहीं टच करेंगे। परंतु जिनका दिल का अनुभव है, औरों को बताने से उन्हों की दिल को टच कर सकेंगे। और इस ज्ञान देने वाला परमात्मा है और परमात्मा की शक्ति से हमारा परिवर्तन हुआ है, तो वो परिवर्तन देखकर नेचुरली सब मानेंगे, घर वाले भी मानते हैं कि आपने ज्ञान लेके अपने जीवन को बदला है। तो ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु आपसे जरूर प्रभावित होते हैं। तो जब बाबा से शक्ति मिलती है, तो जैसे आज था ना ब्लेसिंग में, सात से अथक रहेंगे। तो जब बाप को पहचाना है, बाप का साथ है, बाप का हाथ पकड़ा है, तो क्या है, थकावट नहीं। अब बाबा तो सत्य है, परंतु बच्चों को भी सच्चा बनना है, ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट कौन रहेंगे, जो सही काम करते हैं। जो गलत काम करेंगे वो क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे। चाहे ब्राह्मण भी है ना, हमने देखा है कई है झूठ बोलने में होशियार है। वो कहेंगे उसने पहले मारा, वो कहेंगे उसने पहले मारा, वो कहेंगे उसने मारा मारी शुरू की पहले, वो कहेंगे ना उसने किया। तो क्या है, जब झूठ काम करते हैं, देवभान है, झूठ काम करेंगे और झूठ करेंगे, झूठ बोलेंगे। बहुत थोड़े हैं जो अपनी गलती कबूल करेंगे। हाँ, तो जैसे बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनने में मेहनत है। देह अभिमान के संस्कार हमारे ऐसे पक्के हो गए हैं, जो देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। हाँ, तो जो बाबा को ऑनेस्टली अपनी गलती बता देते हैं, बाबा कहते हैं मैं 50% मार्क्स पास आपको माफ कर दूंगा, अभी आगे से गलती नहीं करना। तो ऑनेस्टी से क्या होगा, हल्कापन फील होगा, नहीं तो दिल खाती रहेंगी, योग ठीक नहीं लगेगा। और एक गलती के बाद फिर गलती छिपाने के लिए दूसरी गलती करेंगे। और बाबा कई बार कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, यदि सर्जन से बीमारी छिपाएंगे तो ठीक दवाई कैसे मिलेंगी। इसलिए बाबा से हमें ऑनेस्ट रहना है, लिख कर देना है, और लिख कर भी जो यदि हल्का ही ना हो तो निमित मैनों को अपनी गलती बतानी है, बोल के बतानी है। क्योंकि हमने देखा है कई बार बाबा को लिखने से, बाबा को योग में बताने से मन हल्का नहीं होता है। तो निमित चाहे दादी है दीदी है उनको बताना चाहिए। ऑनेस्ट माना जो बाबा के द्वारा राय मिलती है श्रीमत मिलती है उस अनुसार अपना समय संकल्प सब उस अनुसार यूज करो। मन वचन कर्म बाबा के डायरेक्शन अनुसार हो, मनमत ना हो, परमत ना हो, श्रीमत अनुसार। क्योंकि मनमत होने से क्या होगा, व्यर्थ का खाता बढ़ेगा, व्यर्थ समय संकल्प धन खर्च होगा, तो हम समर्थ नहीं बन सकेंगे। स्वचिंतन के बजाय परचिंतन चलेगा, स्वमान के बजाय अभिमान में आ जाएंगे। तो जो अभिमान में आता है पर चिंतन करता है, मनमत पर चलता है परमत पर चलता है, उनको ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। कई बार कई बच्चे समझते हैं बाबा तो जानता है ना मेरे मन में क्या है, मैंने क्या किया है। बाबा को क्या बताना है, बाबा जानते हैं। नहीं, बाबा भल जानते हैं परंतु मैं ऑनेस्ट हूं, मुझे बताना चाहिए। तो जितना हम ऑनेस्ट रहेंगे हमारी चढ़ती कला होंगी, सफलता होंगी, हम समर्थ बनेंगे। बाप का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। ऑनेस्टी माना निमित्त भाव और निर्माण भाव। कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त हूं, ये बुद्धि में रहे। ऐसे नहीं मैं करता हूं, मैं पना छूट जाए मेरापन छूट जाए। और निर्माण अहम ना हो, ऑनेस्ट माना जो संकल्प बोल और कर्म एक हो। ऐसे नहीं के हम सोचे एक बोले दूसरा, कर्म करने समय कहें क्या करें, नहीं होता है। नहीं, जो प्रॉमिस दिया है करके दिखाना। ऑनेस्ट माना सर्व के लिए शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। मेरा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। ऐसे नहीं कि मैं अपना ही स्वार्थ का सोचूं, नहीं, मुझे सर्व का कल्याण करना है। और जो ऑनेस्ट होगा वो अच्छा लडोल रहेगा, परिस्थितियां आएंगी वो हलचल में नहीं आएंगे। और जब हमारा फाउंडेशन अनुभव के आधार पर है, प्राप्ति के आधार पर है, तो क्या होगा, निश्चय पक्का होगा। और निश्चय पक्का है तो विजय है ही, हलचल नहीं होंगी। परिस्थिति हमको बदलेंगी नहीं। ऑनेस्ट माना वफादार और ईमानदार। तो उनकी बुद्धि में श्रीमत क्लियर होंगे तो प्रश्न नहीं होगा, ये करूं वो करूं, ये ठीक है ये वो ठीक है, नहीं, श्रीमत है वो ठीक है। ऑनेस्ट है, समझेगा सब कुछ बाबा का है, तो बाबा का खजाना समय संकल्प कुछ भी है हमें वेस्ट नहीं करना है। अलबेला नहीं पढ़ना, आलस्य ना हो। और जो ऑनेस्ट होगा सबका उनमें विश्वास होगा। क्योंकि हम एक बार झूठ बोलेंगे ना तो दूसरी बारिश कोई हमारे पर विश्वास करे ना करे, सोचेंगे पता नहीं लास्ट टाइम झूठ बोला है, अभी भी हो सकता है झूठ बोलूंगा। और जो ऑनेस्ट होगा तो उसको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि मैं सच्चा हूं, क्यों, सबका विश्वास है। झूठ बोलने वाले, एक बार भी झूठ बोला तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैं सच्चा हूं। अब सफाई की बात, ब्राह्मण जीवन में तन मन और घर आंगन सब साफ चाहिए। देखो मधुबन का आंगन कितना साफ है, खास कई स्वीपर को सवेरे सवेरे बुलाते हैं 6 बजे में कि मुरली के पहले आंगन साफ। और मुझे याद है जब भी विदेशी आए ना, पहले विदेशी आए ना इंडिया में 73 में या कभी भी आए ना, कह के हम मान नहीं सकते इंडिया में इतनी सफाई हो सकती है, क्योंकि उनकी बुद्धि में यही था इंडिया बहुत गंदा है, गरीब है, गंदा है। तो जब मधुबन आए तो कहा इतनी सफाई है। तो बाहर की सफाई, शरीर की सफाई, मेजोरिटी ब्राह्मण दिन में दो बार स्नान करते हैं मेजोरिटी, लेट्रिन जाते हैं तो भी स्नान करना होता है और सवेरे तो जरूर स्नान करना है, चाहे लेट्रिन जाए ना जाए मुरली के पहले, और कई तो अमृत वेला में पहले भी स्नान करके जाते हैं तो शरीर सफाई करते हैं। और घर की सफाई, शुरू शुरू में ऑस्ट्रेलिया में हमारे मेजोरिटी सेंटर भाई चलाते थे और भाई लोग भी इतना किचन साफ रखते थे। तो मुझे याद है एक सेंटर ऐसा था कि बाबा को कमरे में जाने के लिए उनको किचन से पास करना होता था, तो माताएं कमेंट करती थी कि ये तो भाई लोग इतना साफ रखते हैं, हमारा घर इतना साफ नहीं होता। क्योंकि विदेश में तो क्या करते हैं कि जूठे बर्तन फौरन साफ नहीं करते हैं, वो इकट्ठे करते हैं फिर एक साथ एक बार दो बार दिन में साफ करते हैं। और उनों में इतनी सफाई नहीं होती है तो माताएं बहुत प्रशंसा करती थी। और प्रकाशमणि दादी और रतन मोहिनी दादी और आनंद किशोर भाई 1954 में शिवानंद आश्रम में हिंदू धर्म सम्मेलन में गए थे। तो गए थे तो उन्होंने क्या किया था, कहा कि हमको सब मसाला वगैरह दे दो, हम अपने आप खाना पकाएंगे। तो उनको मदद करने वाला कोई छोटा उसका शिष्य था जो यहां फिर बड़ा होके आया था अपने सन्यासी धर्म सम्मेलन में, उसने अपना अनुभव सुनाया कि ये दादियां थी वो अपने मसाले ऐसे रखते थे, यहां हल्दी है तो यहां ही रहेंगे, सबका स्थान फिक्स था। तो वहां से उठाकर कभी भी आप आंख बंद करके भी वहां हाथ रखेंगे, वहां से नमक मिलेंगी, हल्दी मिलेंगी, ये मिलेंगे, इतना एक्यूरेट और साफ। तो घर आंगन और देश की सफाई का भी अभियान चलाया था। तो सफाई तो ब्राह्मणों का पहला बात है, तो तन की भी सफाई रखनी है, घर की भी सफाई करनी है, आंगन की भी सफाई करनी है। और आंगन की सफाई कर ऐसे नहीं कि बाहर रास्ते पर कचरा डाल लो, आंगन की सफाई करके किचरे के डब्बे में किचरा डालो और काउंसिल वहां से किचरा ले जाए। आजकल तो सफाई के लिए भी काफी व्यवस्था हो गई है, पुराने जमाने में ऐसे होता था अपने आंगन का किचरा जाकर बाहर रास्ते पर फेंक देते थे, अभी नहीं। और विदेश में तो क्या होता है, अमेरिका में खास, आप अपने घर से कमरे से ही कचरा डालो, एक खिड़की होती है तो नीचे अग्नि होता है, कचरा जल जाता है। तो समझो सफाई जरूरी है अपनी हेल्थ के लिए। अभी मन की सफाई, तन तो साफ करना है, मन भी तो साफ रखना है ना। मन में देखना है कि मन में व्यर्थ संकल्पों का, नेगेटिव संकल्प का, पर चिंतन का किचरा ना हो। ये ब्राह्मणों की विशेषता है, मन की भी सफाई हो, अटेंशन हो। तो जितना हम अटेंशन रखेंगे उतना क्या होगा, प्राप्ति होगी। लक्ष्य रखने से लक्षण आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि हर एक का लक्ष्य है हमको समर्थ बनना। व्यर्थ होगा तो समर्थ कैसे बनेंगे, इसलिए ध्यान रखना है व्यर्थ संकल्प ना चले। और जैसे भी समय मिले मन को बाबा की याद में ले जाओ। मन को बिजी करेंगे ना तो व्यर्थ क्यों चलेगा। कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल शॉप, गुजराती में कहते हैं नवरो नखो द्वारे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, ज्ञान का मनन मंथन करना है, याद में मन को लगाना है। तो जितना याद में मन को लगाएंगे तो फालतू संकल्प आने का चांस ही नहीं रहे। तो इसलिए हमें अटेंशन रखना है, चेकिंग करते रहना है कि मन क्या करता है। जैसे बच्चों पर हमको ध्यान रखना पड़ता है ना, हाँ, ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा उतल पातल कर देगा, कुछ गिराएगा, कुछ तोड़ेगा, कुछ फोड़ेगा, अपने आप को जलाएगा। तो इसलिए घड़ी घड़ी देखना पड़ता है क्या करता है बच्चा। तो मन तो बच्चे से भी ज्यादा चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। तो इस मन रूपी चंचल घोड़े को पकड़ पकड़ कर घड़ी घड़ी बाबा की याद में ज्ञान मनन मंथन में लगाना है। तो जितना अटेंशन और चेकिंग करेंगे तो अपना मन एकाग्र होगा और बाबा से खजाना लूट सकेंगे। अभी समय क्या है, खजाना जमा करने का। कुछ भी व्यर्थ न जाए। हाँ, तो इसलिए जिसको अपने आप को शक्तिमान बनाना है उसको अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना पड़े कि हम कुछ संकल्प समय व्यर्थ न गंवाएं। तो इसलिए सच्चाई और सफाई से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि एक गुण अनेक गुण को लाएगा, एक अवगुण अनेक अवगुण को लाएगा। इसलिए ऐसे भी नहीं सोचो कि हमारे में एक ही खामी है ना, नहीं, इतनी भी खामी होंगी ना सूक्ष्म रूप में, तो वो बाबा कहते हैं ना सूक्ष्म रूप फिर बड़ा रूप हो जाएगा। इसलिए सूक्ष्म रूप को भी काट के जलाना है। जब तक जलाएंगे नहीं योग अग्नि में, तब तक सफाई नहीं होगी। ओम शांति।
अभी किसी को प्रश्न उत्तर जैसे कहा था कल आप लोगों ने, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, भले किसी ने चिटकी में न भी लिखा हो, ये माइक पकड़कर आप दीदी से प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को है या प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त हैं सभी? हाँ, सभी पार है, प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त। ठीक है, हम दीदी से ऐसे ही सवाल कर लेते हैं। दीदी, आपको बाबा डॉक्टर निर्मल आश्रम जो टाइटल दिया है वो किस प्रसंग में दिया है?
कौन सा टाइटल?
निर्मल आश्रम।
आश्रम माना पवित्र। तो बाबा ने हमारे जो पवित्रता के संस्कार थे वो समझ लिया, निर्मल माना भी क्लीन, विशेष पानी के लिए निर्मल कहा जाता है। तो बाबा में तो परखने की शक्ति से जब भी कोई मिलता था तो बाबा चेहरे से, चलन से, और जब हम बाबा की गोद में जाते हैं तो उससे बाबा परख लेते थे कि क्या उनको में पवित्रता की शक्ति है। तो जब बाबा ने देखा कि हमारे में ये शक्ति है पवित्रता की, बाबा ने टाइटल दिया, क्योंकि हमारा जन्म 1935 में हुआ था, तो 1940s-50s में जब हम बड़े हुए उस समय परिवार से तो बहुत प्यार मिला, परंतु हमारे परिवार में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी थी कि हम पूरा अंग ढक कर रखें, भाइयों से बात ना करें, और पढ़ाई में रुचि रखें, परिवार के साथ घूमना फिरना, मूवी में जाना, बॉक्सिंग में जाना, संगीत के कॉन्सर्ट में जाना, परिवार के साथ सब कुछ करना। इसलिए ना हमको इतने फ्रेंड्स थे, गर्लफ्रेंड भी नहीं, बॉयफ्रेंड की तो बात ही नहीं। क्या था कि मैं रहती थी कांदीवली में, जो बम्बई जानते हैं, रहती थी कांदीवली में, हमारी स्कूल कॉलेज सब शहर में। तो हमारी जो स्कूल फ्रेंड थी वो भी हमारे से 20-25 मील दूर रहती थी, तो वो भी ना हमारे पास आती थी ना हम उनके पास जाते थे। सेम थिंग कॉलेज में, इतने दूर रहते हैं, कौन आएगा मुंबई से कांदिवली तक, तो इसलिए न आते थे न जाते थे। परिवार के साथ ही जो कुछ करना होता था करते थे, तो सब कुछ करते थे।
तो इस प्रसंग में बाबा ने इनकी, मतलब दीदी ने कितना अच्छा क्लियर, हाँ कुछ पूछना है आपको?
ओम शांति। दादी जी, ऑनेस्टी और ट्रूथ, माना सत्यता और प्रामाणिकता, दोनों एक ही धारणा है कि अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंस है?
मैं कहूंगी सच्चाई ट्रूथ है, पर ट्रूथ सच्चाई ना हो सकता, मतलब थोड़ा फर्क है। ऑनेस्टी और सच्चाई में फर्क ये है, जैसे हम कहते हैं बाबा सत्य है, ज्ञान सत्य है, पर व्यक्ति जब सत्य मार्ग पर चलते हैं या सत्य बोलते हैं, सत्य करते हैं, चलन में सत्यता है, तो उसकी एक्टिविटी को हम कहेंगे ऑनेस्टी है। उसमें सच्चाई तो है, परंतु वो व्यक्ति को हम कहेंगे वो ऑनेस्ट है।
तो क्लियर हुआ सत्यता और ऑनेस्टी में अंतर। स्पष्टता, दीदी स्पष्टता किसको कहेंगे फिर? स्पष्टता किसको कहेंगे? वो भी सच्चाई में आएगा
स्पष्ट?
हाँ
नहीं, स्पष्ट का क्या है, क्लैरिटी के क्लियर करके बताया क्या है। आज मैं सच हूं परंतु मुझे समझाने नहीं आता है, तो क्योंकि स्पष्ट करके समझाने में हमको विस्तार करना पड़ता है, दलील देनी पड़ती है, तब उनको स्पष्ट होता है। नहीं तो मैं कहूं कि मैं सच हूं, लोग मानेंगे नहीं ना, जब तक मैं स्पष्ट ना करूं। क्योंकि मुझे सारा प्रूफ देना पड़ता है ना, क्यों सच है वो प्रूफ देंगे तब सामने वाला मानेगा। क्योंकि जैसे है भक्ति करने वाले हैं, हम ही सच्चे हैं, तो उनको हमको बताना पड़ेगा क्लियर करके, स्पष्टीकरण करके कि सच क्या है, झूठ क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है।
और दीदी, अभी थोड़े दिन पहले या थोड़े मास पहले मुरली में आपके लिए बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि निर्मल बच्ची अच्छी है इसलिए वृद्धि हुई है, क्योंकि थोड़ी स्ट्रिक्ट भी रहती है लेकिन वो जरूरी भी है। वो किस संदर्भ में? हाँ स्ट्रिक्ट भी रहती है और वो जरूरी भी है। कहा
क्या है, बाबा के ज्ञान में डिसिप्लिन होनी चाहिए। अभी भी कोरोना का टाइम है ना, मैं क्लास में जाकर पहले देखती हूँ किसने मास्क नहीं पहना, तो मैं उनको कहती हूँ मास्क क्यों नहीं पहना। क्योंकि चाहे हेल्थ है, मानसिक शारीरिक, हमको नियम को पालना पड़ता है। हाँ, और विदेश में नहीं? तो वो लोग इतने इंडिपेंडेंट और फ्री, तो जब तक स्ट्रिक्ट ना बनो तो ब्राह्मण की डिसिप्लिन पर कोई चलेगा क्या? तो इसके लिए ब्राह्मणों की डिसिप्लिन पर चलने के लिए स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है और अपने हेल्थ के लिए भी तो डिसिप्लिन में रहना पड़ता है ना, खाना पीना उठना बैठना। अब कोरोना के टाइम में डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे तो एक देख दो का चेप लग जाता है ना। तो मुझे देखकर ज्ञान सरोवर में मास्क नहीं पहना है तो पहन लेते हैं।
दीदी कल हमने इनको भी पहले ही अलर्ट कर दिया, हमने कल इनको पहले ही अलर्ट कर दिया क्योंकि पिछली बार आए थे तो आपने सबको टाइट किया ना, तो मुझे याद था।
अभी भी मैं देखती हूँ, देखो ये भाई है कितना नजदीक बैठा है, थोड़ा डिस्टेंस रखो, अभी नजदीक बैठने का टाइम नहीं है। हम ज्ञान सरोवर में तो भट्टी में एक के बीच में एक जगह रखाते हैं, यहाँ तो इतनी जगह ही नहीं है। हमने तो अभी हमारा ग्रुप 250 का आया है, हारमोनी हॉल में आज से होगा क्योंकि डिस्टेंस नहीं मेंटेन होता है ना नीचे, तो इसलिए हमारे पास मॉर्निंग क्लास में एक भाई घूमता रहता है, सबको बिठाता है ठिकाने कि एक के बीच में एक जगह हो, मास्क सभी ने पहना हो, वो एक भाई की ड्यूटी है।
तो बहुत जरूरी है, जैसे बाबा भी कहते हैं ना, सिर्फ प्रेम स्वरूप नहीं शक्ति स्वरूप भी होना जरूरी है।
मैं कहती हूँ आप आए हो भट्टी में शक्ति लेने, बीमारी देने या लेने नहीं आए हो, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। शक्ति लेके जाओ, खजाना लेके जाओ, पर बीमारी देके लेके नहीं जाना।
तो बिल्कुल सही, जैसे बच्चे की पालना में भी ऐसे ही होता है, माँ को कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है कभी प्रेम स्वरूप, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी हमें चलना है।
और बाबा ने एक बारी हमको ये भी कहा कि देखो पतंग होती है ना, पतंग चगाने वाले को क्या करना पड़ता है, पहले दो दिली रखनी पड़ती है, पीछे टाइट पकड़नी होती है। तो हाँ, कभी ढीला रखना होता है कभी टाइट रखना होता है, नहीं तो पतंग का मजा नहीं आता है।
ओम शांति, मुझे पूछना है कि अगर कोई हमें गलत समझे।
नहीं, ये मास्क निकाल के बोलो।
मुझे पूछना है कि कोई अगर हमें गलत समझे तो क्या हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए या फिर मौन धारण करके अपनी शक्ति सेव करनी चाहिए, मतलब ज्ञान में नहीं ऐसे भी।
देखो कभी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, पर जब वो कहे कि मैं नहीं मानता हूँ दुनिया में स्वर्ग होगा या ऐसे सुख की दुनिया होंगी या ऐसे पवित्र दुनिया होंगी, हाँ कितना भी हम समझाने की कोशिश करें वो नहीं मानता है, छोड़ दो। बाबा कहते हैं
वो कहती है ज्ञान की बातों को जब बताते उसमें कन्विंस करने के लिए नहीं, वैसे ही अगर लोग हमें किसी कारण से गलत मानते हैं कि व्यक्ति गलत है,
इसलिए एक्सप्लेन के लिए भले विस्तार से समझाओ, परंतु यदि नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे कुल का नहीं होगा तो मानेगा नहीं, तो छोड़ दो।
जो दीदी ने पहले भी कहा ना, जो हमने स्पष्ट पूछा कि स्पष्टता और उसमें क्या, तो वही सच हम जरूर हैं लेकिन सामने वाला तभी मानेगा जब हम स्पष्ट करेंगे, कन्विंस करेंगे। तो कई मामलों में हम कन्विंस कर सकते हैं तो करें, वरना मौन धारण करके रखें। तो चलिए और किसी को पूछना है? टाइम वैसे ही पूरा हो गया है, पूछना है किसी को और? भरपूर है सभी प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त। तो दीदी को बहुत बहुत थैंक्स देते हैं, आभार मानते हैं, शुक्रिया करते हैं। देखो दीदी की उम्र यज्ञ की उम्र के बराबर है, लेकिन दीदी फिर भी इतनी चुस्ती और फुर्ती के साथ हर प्रकार की सेवाओं में उपस्थित रहते हैं। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति दीदी। पांडव भवन में आके बाबा ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का अनुभव शांति स्तंभ में जाकर मिलता जरूर है। तो जो कृष्ण की आत्मा है, जो लास्ट जन्म में ब्रह्मा की आत्मा, मतलब 84वां जन्म है उनका, तो वैसे लक्ष्मी, तो लक्ष्मी मम्मा का यादगार है, तो मम्मा का यादगार क्यों नहीं बनाया है? ताकि कोई आए, बाबा के बच्चे इतने सारे बनने ही वाले थे, तो मम्मा का भी यादगार होना चाहिए ना, जो लक्ष्मी की वासना आए जब उनके यादगार स्तंभ पे जाए। वैसे जैसे ब्रह्मा का शांति स्तंभ है, दादी जानकी का शक्ति स्तंभ है, प्रकाशमणि दादी का प्रकाश स्तंभ है, तो मम्मा का क्यों नहीं बनाया उस टाइम पे?
हम आपका सवाल है ना मुनि बहन के सामने रखेंगे। क्या है कि अभी तक मम्मा का यादगार नहीं बनाया है, इसलिए जानकी दादी ने पुणे में जगदम्बा भवन बनाया मम्मा का यादगार। परंतु हाँ, गुजरात में क्या बना रहे हैं? बनाएंगे, बनाओ, बनाओ ना, यादगार हमारे दिल में है। हाँ, यादगार तो हमारे दिल में है ना। बाबा के बच्चे सब जानते हैं मम्मा का महत्व, और मैं तो अपने अनुभव में सुनाती हूँ कि मैं पहले दिन मम्मा को मिली हूँ, और मैंने मम्मा से जितनी पालना ली तो मम्मा के लिए मेरा ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा प्यार था और रिगार्ड, प्यार और रिगार्ड। तो इसलिए हमारे दिल में है, बाहर बनाया ना बनाया वो तो अभी मुन्नी बहन के
ठीक कहा कि ये सब बातें तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होती है।
इतने तक दीदी मनमोहिनी का भी कहा है। तो अभी ये बहुत सोचने की बात नहीं है, हर एक को अपने दिल में रखना है। और अभी आजकल है ना, विदेश में से उन्होंने प्रोग्राम बनाया लिगेसी ऑफ लव, इसमें सब दादियों का बनाया है, क्लासेस वगैरह रखे हैं, उनका अनुभव सुनाना है। तो इसलिए हम कहते हैं अभी इन छोटी छोटी बातों में हम जाए तो
यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राज, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान, कोई वादे के पक्के पक्के हैं।
निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं।